हरे कृष्णा। तो आज के 8 फरवरी के सायंकालीन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कल की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री वृंदावन धाम की यात्रा अभी अंतिम चरण पर आई है और श्री चैतन्य महाप्रभु 2 महीने इमलीतला और अक्रूर घाट में रहे। अक्रूर घाट में उन्होंने भोजन किया और अक्रूर घाट में भोजन करने के पश्चात वो सवेरे और शाम इमलीतला पर भगवान के नाम का जप किया करते थे और इमलीतला पर वो नीले रंग के हुआ करते थे। यमुना जी को निहारते हुए यमुना जी से आने वाले सुंदर शीतल जल वायु का अनुभव करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पर कीर्तन करते हैं और ब्रजवासियों को हर रोज नाम महिमा के बारे में प्रवचन सुनाते हैं। तो इसके बाद में अक्रूर घाट में एक बार चैतन्य महाप्रभु यमुना नदी पे कूद गए। यमुना नदी ऐसी है कि वो पूरे वृंदावन धाम को गोल कवर करके घूम के चले जाती है। अगर श्री वृंदावन धाम को अगर हम आंख समझते हैं तो यमुना जी काजल की तरह है, पूरी तरह से एक तरफ से आती है, पूरी गोल परिक्रमा करके फिर चली जाती है। तो उस तरह से अक्रूर घाट यमुना जी के उस तरफ है। अक्रूर घाट की लीला ऐसी है कि जब कृष्ण भगवान और बलराम जी अक्रूर जी उनको लेकर मथुरा जा रहे थे, नंदगांव से वो निकले, अक्रूर गमन मार्ग से निकले और वृंदावन की जो परिसीमा है वो अक्रूर घाट है, उसके आगे फिर यमुना पार करके मथुरा शुरू होता है। तो अक्रूर घाट पहुंचे और अक्रूर जी ने वहां पर मतलब उस घाट का नाम अक्रूर घाट पड़ा क्योंकि अक्रूर जी वहां पर पहुंचे। अक्रूर जी ने वहां पर यमुना जी में स्नान किया, कृष्ण बलराम जी रथ पर बैठे थे और यमुना जी में जब उन्होंने डुबकी लगाई और पानी के अंदर जाके जब आंखें खोली तो उनको अंदर वही कृष्ण और बलराम शेषशायी नाग और विष्णु बनकर बैठे हुए नजर आए। बलराम जी वही शेष बने हुए हैं और कृष्ण जो है विष्णु बने हुए हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतने जल्दी भेष बदल कर पानी के अंदर कैसे आ गए। इससे उनसे पानी के बाहर आ गए, देखा तो रथ पर बैठे हुए जैसे थे वैसे ही बैठे। फिर पानी के अंदर गए तो फिर उनको वो दर्शन नजर आया, भगवान विष्णु बने हुए हैं, बलराम जी शेषशाही नाग बने हुए। तो लीला का अर्थ यह है कि भगवान जो लीला वृंदावन में करते हैं वो माधुर्य लीला है, उसमें भगवान स्वयं अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन वृंदावन के बाहर तुरंत वो ऐश्वर्य अपनाते हैं, माधुर्य को छोड़ते ऐश्वर्य अपनाते हैं, तुरंत विष्णु का जो ऐश्वर्य है उस प्रकार की लीला आरंभ होती है। वृंदावन के बाहर वो बंसी नहीं बजाते, श्री वृंदावन में बंसी बजाते हैं, नंगे पैर घूमते हैं और किसी को पता नहीं कि वो भगवान है, लेकिन मथुरा जाते ही उनका जो भगवान का स्वरूप है वो प्रकट होने लगता है। फिर वो मथुरा में हस्तिनापुर में द्वारका में द्वारकाधीश राजा के रूप में क्षत्रिय के रूप में ही लीला करते हैं। तो ये दिखाने के लिए ये जताने के लिए भगवान ने लीला किया, अक्रूर जी को ये बताया कि अभी आगे जाके ऐश्वर्य लीला आरंभ होने वाली है और माधुर्य लीला यहां समाप्त होगी। अक्रूर जी जब वहां से सबसे पहले कंस के आदेश पर जब मथुरा से निकल के वृंदावन में आए थे तो उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह रज में देखे, इसका मतलब वृंदावन में भगवान चप्पल जूता नहीं पहनते, इसलिए उनके चरण चिन्ह वहां पर है। जैसे ही वो उसी जगह पर जहां पर वो पहले अभी जा रहे हैं वापस उसी जगह पर उन्होंने प्रवेश किया तो तुरंत उन्होंने जमीन पर उतरकर रथ से दंडवत प्रणाम किया चरण चिन्हों को और उन चरण चिन्हों में वो लोटपोट हो गए। इसी जगह पर कृष्ण भगवान ने अक्रूर घाट की जगह पर कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। इसकी लीला ऐसी है कि अरे बार बार बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम ही विष्णु हो, तुम्हारे ही अवतार होते हैं, तुम्हारे सखा हो, तो हमें वैकुंठ का दर्शन कराओ ना। कृष्ण ने कहा कि तुमको वैकुंठ में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, परेशान हो जाओगे आप। नहीं नहीं, हमको विश्व वैकुंठ का दर्शन करना है। तो फिर भगवान ने कहा आंखें बंद कर लो, और फिर कहा आंखें खोल लो। जब आंखें खोली थी तो सभी ब्रजवासी भी अपने आप को वैकुंठ में पाया। वैकुंठ में दूर सिंहासन पर श्री कृष्ण विष्णु बनकर लक्ष्मी जी के साथ में बड़ा अलंकार पहन के, मुकुट पहन के, राजवस्त्र पहन के बैठे हुए हैं। उनके आसपास बहुत सैनिक हैं, बहुत हवा देने वाले लोग खड़े हैं, गीत गाने वाले लोग खड़े हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं, बहुत एकदम ऑफिशियल वातावरण। और ग्वाल बाल सब भगवान से बड़ी दूर, उन पर पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। सब ऐश्वर्य संपन्न था, तो ब्रजवासियों को एकदम घुटन सी होने लगी। और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हमको नहीं देखना है वैकुंठ, हमको वापस ले चलो। तो आवाज आई, आंख बंद कर लो। तो ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली, अभी खोलो। तो फिर अक्रूर घाट में अपने आप को सब लोगों ने पाया। तो भगवान के वैकुंठ रूप का ब्रजवासियों को कोई इंटरेस्ट नहीं। वैकुंठ में क्या लीला होती है, दंडवत प्रणाम करते हैं, गीत गाए जाते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, वो सब यहाँ पर नहीं होते। यहाँ छीना झपटी होती है, मकन चोरी होती है, रास तरसता है, गौचारण होता है, वहां पर ऐसा कोई गौचारण नहीं होता। वहां सुदामा सुदामा जाके कृष्ण को बोल नहीं सकते, चलो विष्णु जी हम गुल्ली डंडा खेलेंगे, ऐसा बोल नहीं सकते। Can you bring her in between? It's very cold there. So, इसी जगह पर भगवान ने सब ब्रजवासियों को अक्रूर घाट पर वैकुंठ का दर्शन कराया था। तो इस जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु जमुना जी में कूद जाते हैं, और जमुना जी में कूदने के पश्चात भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते हैं और जमुना जी के नीचे चले जाते हैं। तो बल्लभद्र भट्टाचार्य, कृष्णदास राजपूत, सनोडिया ब्राह्मण सब परेशान हो जाते हैं। सब लोग दुखी होकर जमुना जी में छलांग लगाते हैं, और कैसे भी करके प्रयास पूर्वक कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु को उस पर निकालते हैं बाहर और होश में लाते। तो इस दिन बलभद्र भट्टाचार्य ने निश्चय कर लिया कि अभी वृंदावन का वास बहुत हो गया, क्योंकि ये रोज का जमुना जी में गिरना, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार वो पेड़ पर बैठे हुए गिरे हुए थे, चलते हुए कंकड़ में, कांटों में, पत्थर में गिरे हुए थे। हर जगह गिरना, हर जगह बेहोश होना, कांटों में लोटपोट होना, शरीर को जख्म होना, नित्य का कार्यक्रम हो गया था। लेकिन जब अक्रूर घाट पे जमुना जी में जब वो कूद कर पड़े, तब बलभद्र भट्टाचार्य बहुत परेशान हो गए। और उसके ऊपर अक्रूर घाट पे उनको हर दिन 20-20 लोगों का निमंत्रण हुआ करता था। महाप्रभु जी को हमारे घर में लेकर आओ, महाप्रभु जी को हमारे घर में भोजन के लिए लेके आओ। तो किस किस को ना कहे, किस किस को हाँ कहे। लेकिन मूल कारण इसका यह था कि चैतन्य महाप्रभु के जीवित को कोई संकट है, कोई डर है, कोई ऐसा उनको खतरा है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि बार बार वो गिरते थे जमुना जी के अंदर, जल के अंदर, कुंड के अंदर। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु जी को बलभद्र भट्टाचार्य ने विनती की कि अभी आप वृंदावन की लीला समाप्त करो, अभी हम वृंदावन से चलेंगे, अभी इलाहाबाद में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने हाँ कर ली। 2 महीने हो चुके थे, और जब वो मथुरा की ओर जाने लगे तो मथुरा की ओर बहुत सारे गाय का झुंड एकदम अचानक मिला उनको। यहां पर महावन है, महावन यानी गोकुल, वो अक्रूर घाट के आगे आता है मथुरा के पास। तो महावन में जब ब्रज के बाहर चले गए, वो बहुत सारे गाय का झुंड आए, और वो जो ग्वाला था जो गायों को चरा रहा था उसने मुरली बजाई। ग्वाले मुरली बजाते हैं, सब लोग सब मुरली बजाते। चैतन्य महाप्रभु के सामने सब गाय प्रकट हो गई, और उन्होंने ग्वाल बाल ने मुरली बजाई। जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। और ये राजपूत, कृष्णदास, तनोडिया ब्राह्मण और बलभद्र भट्टाचार्य सब लोग उनको हवा देने लगे, कोशिश करने लगे उनको होश में लाने के लिए। अचानक वहां पर एक अद्भुत लीला हुई, सब लोग सुन लीजिए। 50 पठान सैनिक वहां पर आ गए, और दृश्य ऐसा था कि एक सुंदर स्वर्ण कांति वाला तेज पुंज दिखने वाला, जैसे हम कहते हैं ना राजस, यानी कि राजा राजपुत्र की तरह, ऐसे शरीर का एक व्यक्ति लंबा चौड़ा जो राजा के समान दिखता है, ऐसा व्यक्ति रास्ते पर बेहोश पड़ा हुआ है और चार लोग उसके आसपास कुछ कर रहे हैं। तो पठानों को लगा कि ये व्यक्ति को कुछ खिला पिलाकर इन चारों ने बेहोश कर दिया है और उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर इन चार लोगों को घेर दिया और सवाल करने लगे, क्या कर रहे हो, क्या खिलाया तुमने इसको, क्या क्या लूट लिया बताओ, सब निकालो, बाल निकालो, क्या क्या लूटा है, अभी हम आपको अरेस्ट कर लेते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य डर गए, लेकिन सरोडिया ब्राह्मण जो है वो खड़े हुए और कृष्णदास राजपूत भी खड़े हो गए, क्योंकि वो राजपूत है। उन्होंने कहा, अभी मैं एक आवाज दूंगा तो हजारों सैनिक आएंगे और आप सब लोगों को खत्म कर देंगे। सरोडिया ब्राह्मण कहते, मैं मथुरा जी मथुरा के अंदर जाकर बुलाऊंगा तो हजार लोग खड़े हो जाएंगे और आप सब परेशान हो जाएंगे, ये हमारे महाप्रभु चैतन्य हैं और हमने कुछ उनको खिलाया पिलाया नहीं, इनको बीमारी है, बार बार बेहोश हो जाते। तो उनका जो आवेश देखकर पठान का नेता जो था वो भी डर गया और उसमें से एक बहुत बूढ़ा पठान जो है जो बड़ा पढ़ा लिखा था, स्वयं पंडित था, कुरान का पंडित था, वो भी वहां पर आया, उसने भी बेहोश व्यक्ति की देखभाल की, क्या प्रॉब्लम था इसका। उतने में महाप्रभु होश में आ गए और महाप्रभु होश में आ गए तो उन्होंने कहा कि ये एपिलेप्सी की बीमारी है, मुझे दौरे पड़ते हैं बार बार और ये मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया है, ये मेरा सेवा करते हैं, तो आप चिंता मत करना। सब अचंभित हो गए एकदम, देखिए क्योंकि इतना तेज इतना चैतन्य महाप्रभु का था, उसको देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पंडित पठान से चर्चा किया कि कुरान में अंत में भगवान कैसे व्यक्ति हैं और कैसे वो अपने लोक में रहते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा वर्णन आया है, तो आप लोग अपने प्रवचनों में क्यों नहीं बताते कि भगवान व्यक्ति हैं और अपने लोक में रहते हैं, आप लोग क्यों उसको डालते हैं, क्यों बोलते हैं कि भगवान को आकार नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती है। ऐसे अनेक विचारों पर कि आप गाय की हत्या क्यों करते हैं, गाय तो माँ है, ऐसे अनेक विषयों पर महाप्रभु चैतन्य ने उस पठान पंडित से चर्चा किया। पठान पंडित जो है भगवान के सामने नतमस्तक हो गया और भगवान की शरणागति भी उसने चैतन्य महाप्रभु, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दे दी। ये देखकर जो पठान का नेता था पन्ना 50 सैनिकों का, उसने भी तुरंत महाप्रभु की शरण लेकर उनसे दीक्षा ली। इस प्रकार से दोनों को दीक्षा देकर चैतन्य महाप्रभु व्रज के बाहर चले गए, तो वहां से फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए। इस तरह से महाप्रभु जी का चैतन्य का 2 महीने का बहुत सुंदर व्रज की लीला समाप्त होती है और राधा कुंड श्यामपुर का उन्होंने प्राकट्य किया, गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप लोग इन स्थानों को प्रकट करो, इन स्थानों पे भगवान की मूर्तियों को स्थापित करो, किताबें लिखो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी भक्त आते हैं उनकी सेवा करो। तो इसके आगे हम चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद हैं सनातन गोस्वामी, जो लवंग लवंग मंजरी जो है वो भगवान की जो अष्ट सखियां हैं, वो हर एक अष्ट सखियों की 3-3 सखियां होती है और एक एक सखी एक एक कोटि गोपियों को अपने नेतृत्व में रखती है। इसका मतलब एक अष्ट महासखी जो है उसके पास 3 कोटि गोपियां होती है, तो 3 प्रमुख सहायकों की द्वारा 3 कोटि गोपियों की वो नेतृत्व करते हैं, तो उनको मंजिरिया कहते हैं जो गोपियों की सेवा करते हैं। तो इस तरह से लवंग मंजरी भगवान की गोपियों की प्रमुख सहायिका है। तो लवंग मंजरी चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इस लीला में सनातन गोस्वामी के रूप में अवतार लेते हैं। ये कुमार देव के पुत्र थे, इनके 2 भाई थे, एक रूप गोस्वामी उनके भाई थे छोटे भाई, और उनके छोटे थे अनुपम मलिक। वैसे उनका जन्म जो है तीनों का ये कर्नाटक में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण के भारद्वाज मुनि के गोत्र में हुआ था और वहां से वो फिर अध्ययन करने के लिए बंगाल चले गए और वहां पर उन्होंने बहुत सारा शास्त्र का अध्ययन करके विद्या प्राप्त कर ली। लेकिन जब वो इतने बड़े पंडित बने और उनकी यश और कीर्ति इतनी फैल गई, इतना उनके अनुयायी बने, इतने फॉलोअर्स बने कि नवाब हुसैन शाह सोचने लगे कि ये व्यक्ति इतने ज्ञानी और इतने कुशल और इतने कुशल व्यवस्थापक हैं, तो ये मेरे मंत्री बनने चाहिए। तो नवाब हुसैन शाह कौन है? ये कंस के अवतार है। कंस नवाब हुसैन शाह बन गया। तो वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे मंत्री नहीं बनते हो, एक को प्रधानमंत्री बनना है, एक को अर्थमंत्री बनना है, अगर नहीं बनते हो तो हम हिंदुओं की कत्ल शुरू कर देंगे। तो हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर नवाब हुसैन शाह की नौकरी उन्होंने स्वीकार कर ली। तो एक बने नबील खास और एक बने सखर मलिक, नाम दे दिया उनको। छोटे भाई का नाम रखा अनुपम मलिक। तो उन्होंने कई साल तक राम अकेली में नवाब हुसैन शाह की सेवा की। नवाब हुसैन शाह इनके कुशल नेतृत्व में इतना खुश था, अपने छोटे भाई की तरह उनकी देखभाल करता था, क्योंकि उनकी होने से पूरा राज्य का व्यवस्थापन जो था बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था। और राजा जो था वो अलग अलग देशों को अपने राज्य में लाने के लिए, पदाक्रांत करने के लिए घूमता ही रहता था हमेशा, और राज्य बढ़ाने के लिए, राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए तब ये दोनों बहुत व्याकुल हो गए। उनको महाप्रभु चैतन्य की सेवा करनी थी, नवाब हुसैन की सेवा के अंदर भी फंसे हुए थे। तो खत लिखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अब यहां से मुक्त हो जाए और आपकी सेवा में आ जाए। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि जो व्यक्ति, उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है और किसी अन्य पुरुष पर उसका प्रेम है, तो वो क्या करती है? अपने पति की बहुत अच्छी सेवा करती है ताकि उसको जरा सा भी शक ना आ जाए। उसकी अच्छी सेवा कर उसको संतुष्ट कर देती है और समय निकालकर अपने प्रियतम को मिलने जाती है। उस तरह से आपके प्रियतम को मिलने का समय अभी बाकी है, अभी आप बड़े प्रेम से सेवा करो। लेकिन फिर भी ये परेशान हो गए, बहुत बहुत सेवा किया उन्होंने प्रेम से, फिर उन्होंने छुट्टी ले लिया बीमारी का, तो बीमार है। और अपने घर में ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाकर श्रीमद् भागवत का पठन अध्ययन शुरू कर दिया। कई दिन बाद राजा लौट के आया, देखा कि अभी तक लौट के नहीं आए छुट्टी छुट्टी से, स्वयं घर पे गए। देखते तो क्या है, बड़ी सभा में बैठकर ब्राह्मणों के साथ में रूप सनातन जो है भागवत का पठन कर रहे। तो बहुत डांटते हैं उनको, तो आपको अरेस्ट कर लूंगा, आपको काम पे आना है। फिर भी रूप सनातन बोलते हैं हमको अभी काम नहीं करना, अभी हम रिटायर होना चाहते। तो उनको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट करने के पश्चात रूप गोस्वामी, उनके पास इतना धन था, इतना धन था कि बड़ी बड़ी मोटी सी बोट भरकर उनको उनके पास सोने की मोहरी थी। इतना इमेजिन, इतना धन कैसे हो सकता है और कितना धन होगा। तो उसमें से ज्वेलर को बहुत सारा धन देकर रूप गोस्वामी छूट जाते हैं, बोलते हमको मक्का जाना है। इससे वो तुरंत उनको रिहा कर देता है, क्योंकि पुराण में लिखा है कि मक्का जाने वाले को अगर हम कोई सहायता करता है तो बड़ा पुण्य मिलता है, जन्नत में प्राप्ति होती है रहने की। रूप गोस्वामी निकल जाते, सनातन गोस्वामी अटक जाते हैं। और सनातन गोस्वामी भी बाद में जयगर को पैसा देकर, सोने की मोहरे देकर वहां से निकल जाते। सनातन गोस्वामी वहां से भाग भाग के जंगल के रास्ते से जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी महाप्रभु चैतन्य को मिलते हैं। वहां से वो जाते हैं वाराणसी और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होती है। और दो महीने तक वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु उनको भगवान के विषय में शिक्षा देते हैं। कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान यानी भगवान का हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, हमारा और भौतिक दुनिया का, माया का संबंध कैसे टूटना चाहिए, वो त्याग करके कैसे भगवान के चरणों से संबंध प्रस्थापित करना चाहिए, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। दो महीने तक भगवान चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं। फिर उनको आदेश देते हैं कि आप लोग अभी आप वृंदावन चले जाओ और एक भक्त का व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक भक्त का कर्तव्य क्या है, एक भक्त के लिए वैष्णव शिष्टाचार क्या है और सन्यासी का वर्ताव कैसे होना चाहिए, इस विषय में आप ग्रंथ लिखे। चैतन्य महाप्रभु ने बृहद भागवतामृत लिखा और कई ग्रंथ लिखे, लेकिन बृहद भागवतामृत में एक भक्त कैसे होना चाहिए, व्यक्ति कैसे करना चाहिए, एक वैराग्य को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, इस सबको वर्णन किया। साथ साथ में महाप्रभु चैतन्य ने उनको आदेश दिया कि आपको वृंदावन के जितने खोए हुए स्थान है उनको पुनः स्थापित करना है, मूर्तियों की स्थापना करनी है, उनकी पूजा अर्चना स्थापित करनी है, किताबें लिखनी है, और जब भी कोई गरीब भक्त जो वृंदावन में दर्शन करने आते हैं उनको आसरा देकर वृंदावन की सैर भी कराते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर उनके आदेश के अनुसार सनातन गोस्वामी वृंदावन आते हैं और सुबुद्धि राय को मिलते हैं। सुबुद्धि राय पहले से ही यहाँ पर आके रहे होते हैं महाप्रभु चैतन्य के आदेश के अनुसार, और जो भक्त आते हैं उनको वृंदावन की सैर कराते थे। सनातन गोस्वामी को सुबुद्धि राय ने 12 वनों की सैर कराई एकदम डिटेल में, क्योंकि सनातन गोस्वामी सबसे पहली बार वृंदावन में आए। ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चार प्रमुख शिष्यों में से चैतन्य महाप्रभु ने चार बातों को सिखाया। एक बात है स्वतः पर निमंत्रण नियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, ये उन्होंने रामानंद राय जो विशाखा के अवतार थे उनसे सिखाया। और कैसे किसी भी विषय में शांत रहना है और शांत रहकर निर्णय देना है, ये बात उन्होंने दामोदर पंडित से सिखाई। सहनशीलता उन्होंने हरिदास ठाकुर से सिखाई, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों की जगह पर पिटा गया था, फिर भी उन्होंने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया उसके खिलाफ। सहनशीलता क्या होती है उन्होंने हरिदास ठाकुर से सिखाया, और नम्रता क्या होती है ये सनातन गोस्वामी से सिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि चार चीजों की बारे में इन चारों की तुलना कोई नहीं कर सकता है, कोई नकल नहीं कर सकता है। कोई अगर सनातन गोस्वामी की नम्रता, हरिदास ठाकुर की सहनशीलता, शांत प्रवृत्ति दामोदर पंडित जी का और सेल्फ कंट्रोल रामानंद राय का कोई नकल करने का प्रयास करेगा, वो अपने भक्ति के स्थान से पतन हो जाएगा। और एक बात भी बताई थी, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य अगर कोई नकल करेगा तो अपने स्थान से पदच्युत हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की तुलना करते हैं, बहुत सराहना करते हैं, गौरव करते हैं, मानो उनके 5 मुख हो, भक्तों के सामने उनका गौरव करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी को एक रोग होता है जिसमें पूरे शरीर में फोड़े और पीक बनता है, मैं भी पेम्पिकस वल्गैरिस विद इन्फेक्शन, पूरे शरीर में उनके फोड़े और पीक सब बन जाता है, और इस अवस्था में भी चैतन्य महाप्रभु उनको रोज आकर आलिंगन देते हैं। उनको बहुत संकोच होता है कि महाप्रभु जी आप मुझे आलिंगन क्यों दे रहे हैं, आपका स्वर्ण कांति गौर शरीर तेज वाला शरीर रोज मेरे खून और पसीने से खून और पीप से भर जाता है और आपका शरीर दूषित हो जाता है और इससे मुझे अपराध लगता है, मैं आपकी सेवा करने यहां पर आया था और मेरे हाथ से अपराध हो रहा है। फिर जगदानंद पंडित से बात करते हैं, जगदानंद पंडित जो है सत्य मामा के अवतार है। जगदानंद पंडित बताते हैं कि आप लोग आप यहां से वृंदावन चले जाओ, यहां मत रहो क्योंकि आपके हाथ से यहां पर अपराध हो रहा है। महाप्रभु चैतन्य को जाके सनातन जी कहते हैं कि जगदानंद पंडित ने मुझे बताया कि वृंदावन चले जाओ, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं जगदानंद पंडित को। जगदानंद तो बालक है, उसको क्या अकल है, वो आप जैसे सीनियर डिवोटी को आगे देता है, ये सही नहीं है। तो सनातन जी कहते हैं कि यानी आप जगदानंद पे गुस्सा कर रहे हो, यानी कि जगदानंद को अपना मानते हो, इसलिए उनको गुस्सा करने, गुस्सा किस पर करते हैं जब उसको अपना मानते हो, जो पराया होता है उसको गुस्सा नहीं करते। और मुझे आप सम्मान दे रहे हो, नहीं नहीं आप हरिदास तो बालक की तरह हो, और बालक का मूत्र मलम मूत्र जो होता है वो माता को सुगंधित लगता है। जब मैंने आपको पहली बार आलिंगन दिया तो मुझे अगुरु का सुगंध आया, जैसे माता पिता को कभी भी बालक के मलम मूत्र का कभी बदबू नहीं आती है प्रेम के कारण, जैसे आप मेरे बालक हो, इसलिए आपके पीप और खून का मुझे कोई भी संकोच नहीं है, और मैं आपको उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं जगदानंद पंडित से करता हूं। और कई बार आलिंगन दिया उनको, कई बार उनके पीप को शरीर पर झेला। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं आपको आलिंगन करता हूं, महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरे हृदय की शुद्धि होती है, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाती है और भगवान के और करीब जाता हूं। और वो कहते हैं कि आंखों की परफेक्शन वो है एक वैष्णव को देखे, त्वचा की परफेक्शन ये है एक वैष्णव को स्पर्श करें, और कानों का परफेक्शन परिपूर्णता ये है कि वैष्णवों को बोलते हुए सुने, और ये परफेक्शन ये परिपूर्णता मैं आपको देखने से आलिंगन देने से आपके वचन सुनने से प्राप्त करता हूं। आपको आलिंगन करने से चंदन और कुमकुम और अगुरु का सुगंध का अनुभव करता हूं, इसलिए सनातन मुझे गलत मत समझना और उनको और एक बार आलिंगन देते हैं। इस बार जब आलिंगन देते हैं तो अचानक उनका सारा रोग नष्ट हो जाता है और चमकता हुआ तेज पुंज शरीर बनता है उनका सनातन गोस्वामी का। तो कहते हैं कि आपको भगवान ने ये रोग दिया है, महाप्रभु जी कहते हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए दिया है कि आप एक महान वैष्णव हो और आपके शरीर पर रोग है, ये देखकर क्या मैं आपसे घृणा करता हूं कि नहीं, ये कसौटी करने के लिए कृष्ण ने आपको यह रोग दिया है मेरी परीक्षा करने के लिए, कैसे मैं आपको ठुकरा सकता हूं, आप वैष्णव हो भगवान के महान भक्त हो, इसलिए आपके शरीर में रोग हो या ना हो आप महान ही हो। इस तरह से सनातन गोस्वामी का शरीर सुनहरा तेज वाला और बहुत सुंदर बन गया। सनातन गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य को बोला कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं महाप्रभु चैतन्य के साथ सेवा करते हुए तो मुझे दीजिए, और जहां जहां आप चैतन्य महाप्रभु को लेकर झारखंड से गए उन स्थानों का वर्णन कीजिए। फिर सनातन गोस्वामी वहां से निकलते हैं महाप्रभु जी की आज्ञा से वृंदावन जाने के लिए, और जो स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया था झारखंड में, जहां जहां पर उन्होंने हाथियों को शेरों को और पेड़ियों को और हिरणों को और गाय को नचाया था, उन स्थानों का दर्शन करते हुए आनंद से विभोर होते हुए सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन पहुंचते हैं। तो लोग जब सब जो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए तो इनके पास पहले इतनी दौलत थी, इतना अधिकार था, इतना धन था, इतना उनका पावर थी, लेकिन सब कुछ एक तुच्छ तृण के पत्ते की तरह त्याग करके उस वृंदावन में आए। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलम श्रेणीम सदा तुच्छवत्, एक तृण के पत्ते की तरह सारा ऐश्वर्य सारा पोजीशन सारा अधिकार सारा धन दौलत सब छोड़ के आए, वो क्या करने के लिए, रोज एक अलग अलग पेड़ के सोने के लिए, भिक्षा मांगकर भोजन करने के लिए, दिन रात भगवान के नाम का भजन कर बेहोश होने के लिए उस वृंदावन में आए। लोग पूछते थे जो जगन्नाथपुरी में रहते थे उनके साथ में कि सनातन जी और रूप गोस्वामी जी वृंदावन में क्या कर रहे हैं, तो उसका उत्तर था कि वो हर रोज एक अलग अलग पेड़ के नीचे रहते हैं, एक पेड़ से भी उनकी आसक्ति नहीं है, वो इसके फल अच्छे हैं, छाया अच्छी है, इनका जगह अच्छा है, उससे भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इतना विरक्त जीवन था उनका, तो हर एक दिन में पेड़ भी बदली करते थे, माधुकरी करते थे, सूखी रोटी बेसन यानी कि चने की पाउडर, और सनातन गोस्वामी की विशेषता ये थी कि वो आटा भिक्षा मांगते थे, जमुना के जल में आटे को मिलाकर गोटी उसकी गोटी बनाते थे और लकड़ी जलाकर उसमें डालते थे और उसको भून कर खाते थे, इतना वैराग्य था। और क्या करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेकर कीर्तन नृत्य करते थे, बेहोश हुआ करते थे और किताब लिखते थे, और कौन से कपड़े पहनते थे, जो लोगों ने पहनकर फटे पुराने होने के बाद फेंक दिए हुए हैं ऐसे कपड़ों को लेकर पहनते थे लोगों के, और जो फटी पुरानी चादर है इसमें गड्ढे गिरे हुए फटे हुए हैं इस चादर को अपनी शरीर लपेटते थे, इतने धनी लोग थे फिर भी। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य और भगवान कृष्ण के गहरे ध्यान में वो वृंदावन में मग्न हुआ करते थे। जब पुरी के लोगों के अंदर ये बात पहुंच गई कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन में जाने के बाद सनातन गोस्वामी इस तरह रह रहे हैं, तो राम केली में जो उनके अंडर काम करते थे चीफ प्रिंस थे वो, कभी ये प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री थे, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले एक चीफ प्रिंस थे, वो राम केली छोड़कर वृंदावन में आ गए, उनके शिष्य बन गए। इतनी प्रेरणा मिली उनको कि हमारे मालिक इतने धनवान अधिकार संपन्न व्यक्ति इतना यहाँ पर फकीर बनकर रह रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य के प्रेम में कृष्ण भगवान के प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं, उनके शिष्य बन गए वो। चैतन्य महाप्रभु फिर सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के हर एक वन की यात्रा की, बहुत विस्तार में हर एक स्थानों का दर्शन किया। और वो करते हुए सनातन गोस्वामी की खासियत थी, ब्रजवासियों से उनका बड़ा प्रेम था, सारे ब्रजवासी उन पर प्रेम करते थे, उनके घर की वो देखभाल करते थे, पूछताछ करते थे, लड़की की शादी हुई क्या, खेत में फसल कौन सी आई है, अभी कौन सी फसल बोने वाले हो, घर में सब कुशल मंगल है, माता बीमार थी वो कैसी है, आपको बच्चा हुआ है वो कैसा है, कितने बच्चे हैं आपको। एक सन्यासी होने पर भी ब्रजवासियों के गृहस्थों के घर में जाकर उनकी पूछताछ करते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर महान महान योगी लोग और संत लोग मुझे शास्त्रों के वेदों के श्लोक सुनाते हैं, उससे भी ब्रजवासियों की गांव में कथा मुझे अच्छी लगती, ब्रजवासियों की गाड़ी भी मुझे अच्छी लगती। तो ऐसे ब्रजवासियों के परिवार के बीच में जाकर उनकी चर्चा करते थे। ब्रजवासी उनको माता पिता भाई बहन और गुरु मानते थे, इतने ब्रजवासियों को उनका प्रेम था। और जब भी वो भ्रमण करते हुए एक एक गांव में जाते थे, उनका नियम था कि एक गांव में एक दिन के ऊपर रहना नहीं। तब जब सुबह आते थे सब ब्रजवासियों को मिलते थे और शाम को निकलते थे तो सब ब्रजवासी रोते थे, उनको जाने देते नहीं थे, नहीं हमारे पास रहो हमारे पास रहो, फिर भी वो विरक्त प्रवृत्ति में अगले गांव में निकलता थे आसक्त नहीं होने के लिए। लेकिन एक गांव है बठेन, जो यहाँ पर जावट के आगे है, नंदगांव के आगे जावट है, जावट के आगे बठेन गांव है, उस गांव के लोग इतना रोए तो शास्त्र में लिखा है कि सनातन गोस्वामी महापुर तीन दिन रहे, रिकॉर्ड ब्रेक कर गए, एक जगह पर तीन दिन रहे। फिर सनातन गोस्वामी नंदघाट गए, नंदघाट में उसका एक और एक नाम है भय गांव, क्योंकि वहां पर जब नंद बाबा ने अंबिका का व्रत करने के बाद में नदी में स्नान करने गए जमुना जी में, तो संध्या हो चुकी थी, तो उस समय वरुण देव के सैनिक आकर नंद महाराज को अरेस्ट कर लेते हैं और वरुण लोक में ले जाते हैं जल के अंदर। वरुण देव के सैनिकों के द्वारा अरेस्ट होने से नंद बाबा को बड़ा भय हुआ था, इसलिए उस गांव का नाम है भय गांव। श्री कृष्ण और बलराम जी वरुण देव के राज्य में जाते हैं, तो जब वो वरुण देव उनको अरेस्ट करके उनके सैनिक लेके जाते हैं तो वरुण देव को ध्यान में आता है कि अरे इन्होंने गलत आदमी को अरेस्ट किया, ये हमारे भगवान के पिताजी हैं, तो भगवान आएंगे अभी दंड देंगे मारेंगे, इसलिए वो नंद महाराज को अपने सिंहासन में बिठाते हैं और अपने राज्य के वरुण राज्य के गेट पर खड़े होते द्वारपाल के रूप में माला लेकर ऐसे दंडवत प्रणाम करने के लिए कि आते ही दंडवत प्रणाम करूंगा माफी मांगूंगा, और जब अपने पिता को वो सिंहासन बैठे हुए देखेंगे तो फिर उनको क्रोध नहीं आएगा। तो उनको पता था भगवान ने जब इंद्र को दंड देना चाहा तो कैसे दंड दिया, वरुण देव गेट पर खड़े होकर उन्होंने भगवान का स्वागत किया, स्तुति किया, माला पहनाए, पैर धोए, और जब आगे जाकर नंद महाराज को देखा सिंहासन बैठे हुए, वरुण देव पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो वरुण देव कहते हैं कि आपका दर्शन करने के लिए हमने ये गुस्ताखी की, क्योंकि आपका दर्शन करने की हमारी इच्छा थी, इसलिए हमने आपके पिताजी को अरेस्ट करने का ये काम किया है, लेकिन माफ करना गलत मत समझना। तो वो भगवान को बहुत भेंट देते हैं, नंद बाबा को बहुत वस्त्र अलंकार खाना पीना उनकी सेवा करते हैं, प्रसन्न करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और देखते हैं अरे मेरा कान्हा जो है इतना बड़ा देवता उसको वंदन करता है, उसकी स्तुति करता है, पहले गीत गाता है, मेरा कान्हा बहुत बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी देवता भी उसकी सेवा करता है, प्रसन्न होकर नंद बाबा को भगवान लेके आते हैं बाहर। सब ब्रजवासी खुश हो जाते हैं कि नंद बाबा गायब हो गए थे, फिर दोबारा हमारे वीर कान्हा ने उसको वापस लेके आया। तो वो गांव है नंदघाट, जहां पर नंद बाबा ने घाट पर स्नान किया था, उनको भय हुआ था। उस जगह पर सनातन गोस्वामी पहुंचते हैं और वहां पर वो जीव गोस्वामी को देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर एक छेद के अंदर बैठकर भजन कर रहे, उपवास कर रहे, उनको वहां से बाहर निकालते हैं और कंधे में बिठाकर सनातन गोस्वामी उनको रूप गोस्वामी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने उनको दंड देकर वृंदावन के बाहर जाने को बोला था, तो इस अपराध के कारण जीव गोस्वामी वहां पर बैठकर भजन करते रहते। रूप गोस्वामी को जाकर सनातन जी पूछते हैं कि वैष्णव का लक्षण क्या है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं वैष्णव के तीन लक्षण है, आप लोगों को ध्यान से सुनना, जब वैष्णव भगवान की भक्ति में प्रगति करता है तो उसके तीन लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? नाम रुचि। उसको भगवान के नाम के जप के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। पहले वो जप करते हुए सोता है, हरे कृष्णा 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 हरे, लेकिन बाद में सुबह अपने आप उठ जाता है, बड़े प्रेम से उत्साह से भगवान के नाम का जप कर लेता है। जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो वो नाम के प्रति रुचि प्राप्त कर लेता है। दूसरा लक्षण क्या है? जब उसको नाम की रुचि उत्पन्न होती है तो वो वैष्णव की सेवा करता है। उसको वैष्णव की सेवा करना, वो समझ जाता है कि भगवान की सेवा के समान है, तो वैष्णव की सेवा करता है। तो अगली स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज क्या है? जीव दया। जितने जीव भगवान को भूलकर दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की याचना भोग रहे हैं, उनके प्रति उसके मन में करुणा और दया उत्पन्न होती है और उनका उद्धार करने के लिए उनके लिए प्रचार करता है। बोले अच्छा, जीव दया पक्का पता है ना आपको कि ये वैष्णव का लक्षण है? हाँ, जीव दया ये शास्त्र में लिखा है। तो तुम्हारा ये जो जीव है, जो तुम्हारा भतीजा है जीव गोस्वामी, उस पर तुम दया करने करते हो, सब जीवों की दया करने की बात करते हो, और तुम्हारे खुद के जीव यानी कि तुम्हारे भतीजे जीव गोस्वामी के ऊपर दया नहीं करते हो। तब उनके बाद की जो क्या कहते हैं उसको, मराठी में कहते हैं खोज, मतलब कुछ आपने को संदेश देना है किसी को, तो किसी एक उदाहरण के बहाने ऐसे इनडायरेक्टली उसको प्रिंट करते हैं। ये समझ में आया उनको कि सनातन जी क्या कहना चाहते हैं। तब जीव गोस्वामी को अपने शरण में ले लेते, माफ करते हैं। उसके बाद में फिर वो वृंदावन आते हैं और अद्वैत आचार्य जब भजन कर रहे थे, अद्वैत वट आपकी जगह है, कल हम जाएंगे वहां पर अद्वैत वट में। वो वृंदावन जमुना किनारे में है। वहां पर इसकी छोटी सी बैकग्राउंड ऐसी है कि जब भगवान अंतर्धान हो गए, आपको बोर तो नहीं हो रहा है ना, जब भगवान अंतर्धान हो गए तो परीक्षित महाराज राजा बन गए हस्तिनापुर के, और उद्धव जी थे, उनको भी भगवान ने संदेश दिया था तुम्हें जाने के बाद क्या करना है। तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उसके पुत्र अनिरुद्ध, उसके पुत्र वज्रनाभ, उनको परीक्षित ने मथुरा मंडल का राजा बना दिया, खास करके मथुरा मंडल का जीर्णोद्धार करने के लिए। भगवान ने जो लीला किया है उन स्थानों को बनाए रखने के लिए, अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो वज्रनाभ ने तीन मूर्तियां बनाई। पहली मूर्ति बनाई और उत्तरा एक ऐसी ही औरत वहां पर उपस्थित थी, स्त्री राजस्त्री, जिसने कृष्ण भगवान का दर्शन किया था, ऐसी एक ही स्त्री बची। तो वज्रनाभ ने उत्तरा को पहली मूर्ति बना के दिखाई तो उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल जो है ना वो ठीक भगवान के जैसे, तो उनका नाम वज्रनाभ ने रखा मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी। फिर और विग्रह बनाए वो दिखाए तो उत्तरा ने कहा कि ये इनके चरण, इनके जो वक्षस्थल है छाती जो है वो भगवान की तरह है, तो उन्होंने उनको राधा गोविंद जी नाम रखा। और एक विग्रह बनाए तो उत्तरा ने कहा कि इनका मुख कमल जो है वो ठीक साक्षात ठाकुर जी की तरह है, तो उनका नाम रखा वज्रनाभ ने राधा गोपीनाथ जी। तो इनको स्थापन किया वज्रनाभ ने ब्रज में, और समय के अनुसार जब 5000 साल बीत गए तो ये सब विग्रह लुप्त हो गए। तो अद्वैत आचार्य जब भजन कर रहे थे एक जगह, इसका नाम है द्वादश आदित्य टील। जब भगवान कालिया को मर्दन करने के लिए समुद्र में गए, जमुना जी में गए, तो बहुत ठंड लग रही थी उसे, तो राधा रानी ने सूर्य से प्रार्थना की कि इनको गर्मी दो। तो राधा रानी सूर्यवंशी, सूर्य के वंश में राधा रानी का जन्म हुआ है। तो राधा रानी को प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने 12 रूप धारण कर लिए आदित्य के और भगवान को कर्म दिया। द्वादश आदित्य टील, 12 सूर्यों ने जिस पर्वत के टीले पर बैठकर भगवान को गर्मी दिया उसको कहते हैं द्वादश आदित्य टील। उसके नीचे अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार है वो बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो उनके सामने मदन मोहन जी प्रकट हो गए और अद्वैत आचार्य उनकी सेवा करने लगे। जो वज्रनाभ ने स्थापन किए थे लुप्त हो गए थे, वही विग्रह अद्वैत आचार्य के सामने प्रकट हो गए। और जब महाप्रभु जी का बुलावा आया जगन्नाथपुरी में, तो अद्वैत आचार्य ने एक मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण को, उसका नाम पुरुषोत्तम चौबे था, उसको एक मूर्ति सौंपाई। और फिर सनातन गोस्वामी मथुरा में जब भिक्षा करने गए थे तो क्या देख रहे हैं कि यही मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी आधे दिन मूर्ति बनकर बैठ खड़े हैं, आधे दिन उनके बच्चों के साथ में खेल रहे हैं बालक बनकर, एक ही साथ में हा? शाम को विग्रह में खड़े हैं, भोग ले रहे हैं, आरती हो रही है, और दिन में यमुना किनारे जाकर गोस्वामी को बालकों से खेल रहे हैं। तो जो माता थी पुरुषोत्तम चौबी की पत्नी, वो इनके शरारतों से बहुत परेशान हो गई। एक जगह ऐसा लिखा है कि जैसे सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने गए इन चौबे के घर पे, तो पुरुषोत्तम जी कहीं बाहर गए थे, इनकी पत्नी घर पे थी, तो ले जा रही बालक को भिक्षा में, तो उनको अच्छा नहीं लगा, अरे मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी ठाकुर जी, इनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, बहुत विधि लिखी है शास्त्र, भगवान की वैसे ही पूजा करनी चाहिए। उन्होंने उनको टोका, ऐसे मत करो आप, ऐसे भगवान से व्यवहार मत करो, तो भगवान है ठाकुर ठाकुर जी। तो फिर वो एकदम माता जी दो थी एकदम होश में आ गई, उन्हें माफ करना महाराज जी, हमारी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, और भिक्षा दे दी उनको। उस रात को जब लौट के आते हैं वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी, तो भगवान को स्वप्न देते हैं, सपने भगवान आते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरा जो भाव था पुरुषोत्तम चौबे के घर पे उसको डिस्टर्ब कर दिया, अभी जो नेचुरल भाव था उनका माता की तरह डांटना वाटना तो था, वो आपके उपदेश से खत्म हो गया, अभी मुझे वहां पर रहने की रुचि नहीं, क्योंकि वहां का जो भाव था वो समाप्त हो गया आपके उपदेश करने से, अभी मैं आपके संग में आना चाहता हूँ। तो सनातन जी सपन में बताते हैं उनको, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो हर दिन अलग अलग पेड़ में रहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है आपकी सेवा करने का, मैं रुखी सुखी मांग के खाता हूँ, और आटे को जमुना जल में भिगा कर उसकी बाटी को भूर कर खाता हूँ, मेरे पास नमक भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो भी आप भिक्षा में लाते हो जो बनाते हो उसी को मुझे भोग लगा देना, मैं बड़े मजे से आपके साथ में पेड़ के नीचे रहूंगा। तो सपने से उठते हैं और वहां पर सपने देते हैं पुरुषोत्तम चौबे को, कि कल तुम्हारे दरवाजे पर जो सन्यासी आएगा तो मुझे निकाल कर उनको दे देना। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा है। सनातन जी वहां पहुंचते हैं भिक्षा करने के लिए, तुरंत मदन गोपाल जी के विग्रह मदन मोहन जी के उनके सुपुर्द कर देते हैं, और ये उनको लेकर वृंदावन में आते हैं, और रोज वो आटे की बाटी बनाकर उनको खिलाते हैं। एक दिन मदन मोहन जी कहते हैं, अभी आप बोलेंगे मदन मोहन जी से बात कैसे कर रहे, जब मैंने पहले भी कहा इस प्रवचन में आपके लिए, जब व्यक्ति अपने भजन में शुद्ध हो जाता है, सब अनर्थों से मुक्त हो जाता है, सब पाप प्रवृत्तियां स्वार्थी स्वभाव अहंकार नष्ट होता है, तब विग्रह जो है वो भक्त से बात करने लगते। तो सनातन गोस्वामी लबंग मोती मंदिर के अवतार शुद्ध भक्त के भगवान के। तो एक दिन सनातन जी को मदन मोहन जी कहते हैं कि अरे आप कितना बाटी खिलाते हो मुझे सुखी सुखी, थोड़ा नमक डाला दो, नमक के बिना खाए नहीं जैसे। तो कहते कि आज नमक मांग रहे हो तो मिठाई मांगोगे, कहां से दूंगा मैं, सन्यासी हूं, मेरे पास जो मिलता है वो खिलाता हूं, आराम से रहो जो भी है संतुष्ट रहो। उसी समय नमक भर के एक बड़ा जहाज लेकर पंजाब से कृष्णदास कपूर नाम का व्यापारी जो है वो वृंदावन की ओर बिजनेस करने के लिए आते रहता है, जमुना जी के जल में अचानक तूफान आता है और उसका जो जहाज है वो फंस जाता है उसके अंदर, तो कैसे भी जहाज से उतर कर जान बचाकर स्विमिंग करते करते किनारे में आता है। तो मदन मोहन जी बालक बनकर ब्रजवासी बालकों के साथ में खेलते रहते वहां, तो वो मदन मोहन जी को आके मिलता है व्यापारी, वो कहते हैं मेरा जहाज फंस गया है, बताओ कुछ करो उपाय बताओ। तो मदन मोहन जी कहते हैं कि द्वादश आदित्य पर इस चोटी पर एक महाराज जी बैठे हैं सनातन गोस्वामी, बड़े सिद्ध बाबा है, हम उनके पास जाओ, वो आपके जहाज का निकालने की व्यवस्था करें। बड़ी आशा से वो ऊपर चढ़ के आता है, कौन है सनातन गोस्वामी, ढूंढ के निकालो। तो महाराज जी मेरा जहाज फंस गया है कुछ करो, मुझे मदन मोहन जी जो है ना उनकी कृपा से आपका जहाज निकल जाएगा। उतने में मतलब भक्त जो है वो भगवान का नाम दे रहा है, भगवान जो है भक्त का नाम दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे का गौरव करने के लिए जुड़े रहते हैं हमेशा। तो उतने में जब ये बातचीत कर रहा है ऊपर, तो मदन मोहन जी क्या करते हैं अपना फेटा निकालते हैं, अपना जो वस्त्र निकालते हैं और गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, उसकी हवा को जो है दिशा बदल कर उस जहाज को हवा के झोंके से किनारे में खींच के ले जाते हैं और जहाज को बचा लेते हैं। जब ये नीचे जाता है देखता है कि जहाज ऑलरेडी वहां पर आ चुका है, तो उसको लगता है कि सनातन गोस्वामी से मैं मिला इसलिए मेरा जहाज बच गया। और सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि मदन मोहन जी की कृपा से ये जहाज बचा है। दोबारा लौट के आता है, महाराज जी जो चाहे बोलो, आपके लिए करने को तैयार हूं। तो सनातन जी कहते हैं तू सन्यासी हो, मेरे लिए क्या है, मैं तो रोज भिक्षा मांग के खाता हूं, पेट गेंज रहता हूं, पूरा नमक जो है बेच के बहुत धन बनाकर आता है दोबारा, फिर दोबारा विनती करता है। तो सनातन जी कहते हैं मदन मोहन जी के लिए बढ़िया मंदिर बनाओ इस द्वादश आदित्य पीठ के ऊपर। तो जब ये मंदिर बनाने का समय आया तो कृष्णदास ब्रह्मचारी इस शिष्य को मदन मोहन जी की सेवा सौंप कर सनातन जी दोबारा ब्रज के भ्रमण के लिए चले गए। उस समय जगदानंद पंडित जो है वो वृंदावन में आते हैं और महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि वृंदावन जाओगे कि आप सबके लिए भी जरूरी है। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वृंदावन में कैसे रहना है। महाप्रभु जी जगदानंद पंडित को बता रहे हैं वृंदावन में अकेले मत जाओ, वहां पर हमेशा या तो गुरुजी या तो सीनियर डिवोटी या तो भक्तों का संग में रहो, लंबे समय के लिए वृंदावन में मत रहो। ब्रजवासियों के साथ में बहुत ज्यादा घुलमिल मत जाओ क्योंकि ब्रजवासी लोग जो है भगवान से बड़ा स्वयं सिद्ध प्रेम रखते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस लव। कभी कोई ऐसे काम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका मत ही भ्रष्ट हो जाएगा उसको देख के और आप अपने भक्ति से पदच्युत हो जाओगे। इसलिए ब्रजवासियों का संग करने के पहले सावधान रहना। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर उसी दिन सनातन गोस्वामी के पास में आए, उनके ही संग में रहे और सनातन जी ने बड़े प्रेम से उनको पूरे ब्रज में घुमाया। दो महीना रहने के बाद में जब जगदानंद पंडित वापस आने लगे पुरी को, चाहे जगन्नाथपुरी को, तो सनातन गोस्वामी ने उनको चार वस्तु भेंट दिया चैतन्य महाप्रभु के लिए। वो क्या वस्तु भेंट दिया, जहां पर भगवान ने रासलीला किया वहां की रज, गोवर्धन शिला, गुंजमाला, गुंजमाला नाम के एक मणि होते हैं तो यहां पर पेड़ पर आते हैं, जैसे राई होता ना, राई गेहूं आता है ना चावल, वैसे ही पेड़ के अंदर गुंजमाला जो लाल रंग की होती है उसमें काला डॉट होता है, ऐसे मणि पेड़ से आते हैं और वो कृष्ण भगवान पहना करते थे और चैतन्य महाप्रभु भी पहना करते। तो वो गुंजमाला, गोवर्धनशिला और रासलीला स्थली से रज और पीलू फ्रूट्स, पीलू के फल होते ना, उसमें ऐसा होता है कि पीलू के फल बहुत मीठे होते हैं और उनका जो होता है ना बीज वो बहुत तीखा होता है, बहुत जलन होती है उसकी। तो महाप्रभु ने रज, गोवर्धनशिला और गुंजमाला स्वीकार किया और फल सब भक्तों को जगन्नाथपुर में बांट दिया। फिर सनातन गोस्वामी जब मंदिर का निर्माण हो रहा था उस बिजनेसमैन के द्वारा, तो उस पावन सरोवर आए नंदगांव में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु काम्य मन से आए थे, उन्होंने स्नान किया। पावन सरोवर में उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करना शुरू किया। तो पावन सरोवर में तो बहुत जंगल था, सुनसान जंगल था, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर स्नान किया था, उस जगह पर उन्होंने बैठकर भजन करना आरंभ किया। एकदम गायब हो जाते थे सनातन गोस्वामी, किसी को मिलते नहीं थे, एकांत में बैठकर वहां जप करते हुए बेहोश हुआ करते थे, कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, व्रत करते थे, दिन रात नाम में बेहोश होकर जप करते थे। तो एक दिन वहां पर बालक बनकर कृष्ण आए और सनातन गोस्वामी को मिले। उन्होंने कहा कि हमने यहां पर जो औरतें आती हैं जो कपड़ा धोती है पावन सरोवर पे, उन्होंने भी बताया कि यहां पर एक बाबा है वो कई दिन तक ऐसे बेहोश बैठते हैं जब करते रहते, कुछ खाते नहीं पीते नहीं कुछ नहीं करते, दिन रात रोते रहते हैं, नाचते हैं कूदते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन कभी उनको खाते हुए हमने देखा नहीं। इसलिए हमारे गांव का ये नियम है कि सब बाबा लोग हमारे पास भिक्षा मांगते हैं उनको हम भिक्षा देते हैं और जो लोग भिक्षा नहीं करते हैं उनको मैं स्वयं आकर दूध देता हूं, इसलिए इन औरतों के कहने पर मैं आपके लिए दूध लाया हूं, ये दूध पीजिए। तो बालक जो था पगड़ी बांधे हुए था, बहुत सुंदर था, मोर पंख धारण किया था उसने और गाय चराते चराते वहां पर आया था। तो उसकी बातों में मोहित होकर तुरंत सनातन गोस्वामी दूध पीते हैं और दूध पीते पीते ये लड़का गायब हो जाता है। और जैसे ही दूध पीते हैं उनके आंखों से आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, प्रेम के तरंगों में बहने लगते हैं। ढूंढते बच्चा कहां गया, कहां गया, उनको मिलता ही नहीं बच्चा। तब वो समझ जाते कि वो स्वयं कृष्ण थे, उन्होंने अपने हाथ से आगे मुझे दूध पिलाया। तो ये लीला पावन सरोवर को हुई। फिर जब पावन सरोवर में ये भजन करते थे, आज भी जब जाएंगे पावन सरोवर में तो सनातन गोस्वामी का भजन कोठी वहां पर उन्होंने बना के रखा है, बहुत सुंदर। उस समय सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठकर भजन किया करते थे। तो ये बालक ने दूध देने के पहले उनको विनती किया कि बाबा ऐसे खुले में भजन मत करोगे, अपनी कुटिया बना लो। जब दूध पीने के बाद उनको अनुभव होता है कि भगवान कृष्ण थे, उनकी आज्ञा भी उनको याद आती है कि उन्होंने कहा था कि कुटिया बनाओ। तो फिर सनातन गोस्वामी ने अपने लिए एक सिंपल सी कुटिया बनाई और उसके अंदर बैठ कर भजन करने लगे और भिक्षा भी करने लगे। तो जब वो सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में निवास करते थे, रूप गोस्वामी जी डेढ़ कदम पे रहा करते थे, वो भी नंदगांव में ही है। और डेढ़ कदम वो स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान गाय चराकर जब शाम को लौट के आते हैं तो सारी गायों को कदम के पेड़ पर चढ़कर मुरली बजाकर बुलाते हैं। तो जब मुरली बजाते हैं तो एक ही धुन बजाते हैं, लेकिन एक धुन के अंदर सारी गायों को अपना नाम सुनाई पड़ता है। धुन एक ही बज रही लेकिन जितनी 9 लाख लाखों लाखों गायें हैं अपना नाम उस धुन में सुनते हैं। और नाम सुनते सुनते कान ऊपर उठाकर, पूंछ ऊपर उठाकर भाग भाग के उस पेड़ के नीचे आकर जमा हो जाते हैं और ऊपर को देखकर देखते रहते हैं भगवान के, और मुरली की वो धुन जो है वो पागल की तरह सुनते रहते हैं। फिर कुछ गाय जो है वो जानबूझकर भगवान की मुरली की धुन में अपना आवाज अपना नाम पुकार सुनने पर भी आते नहीं, तो उन गायों को निकालने के लिए भगवान स्वयं उतरते हैं कदम झाड़ पेड़ से, उनको जाकर अपने हाथ से लेकर आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको पर्सनली भगवान अटेंशन दे दें। तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनको जाकर खुद जाके हाथ से उठाकर थपथपाती हुए लेके आते हैं। और वहां से फिर सभी गायों को लेकर गीत गाते हुए भगवान अपने घर चले जाते हैं। उस स्थान का नाम है ढेर कदम, वहां पर रूप गोस्वामी रहा करते थे। जब रूप गोस्वामी का मंदिर बन रहा था यहाँ पर गोविंद देव का, वो भी गंगादेव जी के मंदिर के पास, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, हमारे इस्कॉन मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। तो उनका मंदिर भी बन रहा था राधा गोविंद जी का, तभी वो आकर यहाँ पर डेढ़ कदम में भजन कर रहे थे। रूप गोस्वामी ने यहाँ बैठकर विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्तिरसामृत सिंधु, उपदेशामृत ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया है। तो सनातन गोस्वामी का जन्मदिन आता है और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई भी और गुरु भी हैं, तो उनके मन में इच्छा है कि हमारे बड़े भाई गुरु जी इनका जन्मदिन में कुछ उनको तोहफा देना चाहिए। उनको मन में ऐसा विचार आता है कि उनको मैं अगर खीर बना के खिलाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे उनके मन में विचार आता है कि खीर बनानी चाहिए, तो एक सुंदर कन्या जो है अपने सर पे एक टोकरी धारण करके रूप गोस्वामी के पास में आती है और कहते महाराज जी ने मेरे को माँ ने भेजा है, क्या क्या लेके भेजा है? तो कहते चावल, दूध, शक्कर, मेवा, मिठाई आपके लिए भेजा है ताकि इससे आप खीर बनाएं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेखन कर रहा हूँ ग्रंथ का, तो समय नहीं है, तुम ही बना लो खीर। तो वो कन्या जो है रूप गोस्वामी के कुटी में आकर वो सामग्री से बहुत बढ़िया खीर बनाती है और कहती है कि आप भी खा लो, आपके भाई भी आ जाएंगे, उनको भी खिला दो। तो कुछ देर बाद जी बाद में सनातन जी गोस्वामी वहां पर आते हैं और बड़े प्रेम से रूप गोस्वामी जी उनको खीर खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। जब दोनों इस खीर को खाते हैं दोनों के शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों से हंसू आते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। कुछ देर बाद सनातन जी होश में आते हैं, पूछते हैं कि खीर कहां से लाया तुमने, ऐसी खीर हमने कभी नहीं खाई, ऐसा दिव्य प्रेम का अनुभव किया खीर खाने के बाद, ये अद्भुत कुछ अद्भुत बात है, किसने दिया आपको ये सब खीर? तो कहते हैं कन्या आई थी टोकरी लेकर, कह रही थी माता ने सामान भेजा है, मुझे समय नहीं था तो मैंने कहा तुम बना लो, तो उसने खीर बना लिया। तो बोलते हैं लड़की का वर्णन करो, उसका वर्णन करते हैं, कैसे वस्त्र पहने थे, इतनी सुंदर थी। सनातन जी कहते अरे अरे रूप गोस्वामी, तो राधा रानी थी स्वयं, तुम यहां पर बैठकर भजन कर रहे हो राधा रानी का, और राधा रानी को तुमने सेवा में लगाया, अपने आप में अपनी सेवा में लगाया, अपराध किया तुमने। तो रूप गोस्वामी बड़ा संकोच हो गया, अरे मैंने राधा रानी को बचाया नहीं, उसको आदेश दिया कि तुम मेरे लिए खीर बनाओ, मुझे समय नहीं है, और दुख हुआ। लेकिन दुख होने के बाद, संकोच होने के बाद भी दोनों भाई संकोच होने के बाद भी उस खीर को खाना बंद नहीं कर पाए। इतना उनको आकर्षण हुआ कि वो खीर खाते रहे अपने आप को कोसते, लेकिन खीर खाना बंद नहीं कर पाए। तो फिर खीर ही ऐसी थी, राधा रानी की इच्छा थी कि अपने भक्तों को अपने हाथ से खीर बन निकला। तो ये चमत्कार जो है राधा रानी का दर्शन का, ये ढेर कदम पे हुआ सनातन गोस्वामी के लिए। फिर एक ये मदन टेर, वो जो मदन मोहन जी का मंदिर है, जब वहां पर रहते थे तो एक कथा बताना भूल गया। एक शिव भक्त था ब्राह्मण, उसको शिवजी महाराज ने दर्शन दिया। उन्होंने शिवजी महाराज से बहुत धन दौलत मांगी स्वप्न में। तो शिवजी ने कहा कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वो द्वादश आदित्य तीर पर रहते हैं, वहां भजन करते हैं, वहां पर आप जाओ और उनसे आप धन मांगो। उनके पास पारस मणि है, उनके पास ऐसा मणि है जो लोहे को छूने पर उसका सोना बन जाता है, वो उनसे आप ले लो, आप बहुत मालामाल हो जाओगे। तो सपने से जग जाते हैं ब्राह्मण और सीधे अगले दिन सनातन गोस्वामी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, शंकर भगवान ने हमको दर्शन दिया है और कहा है कि आपके पास जाके धन मांगो, और ये बताया कि आपके पास पारस मणि भी है, तो मुझे आप दे दीजिए। तो अच्छा, पारस मणि चाहिए, ले लो, वहां पर रखा हुआ है। तो कहां पर रखा है? वो जो कचरे का ढेर है ना, उसके अंदर कहीं पड़ा होगा, उसको ले लो। जाके थोड़ा एकदम ब्राह्मण कचरा साफ आने लगता है, वैसे ब्राह्मण कभी कचरे को हाथ नहीं लगाते, भंगियों का काम मानते हैं, लेकिन ये पारस मणि के लालच में जाकर पूरा छलांगे मारते हैं उसके अंदर, पूरा उसको ऐसे होता ना सुअर और कुत्ता कैसे करते हैं, खैर से हाथ से ढूंढ निकालता है उस पारस मणि को, तुरंत लगा के देखता है लोहे को, अरे यहां सोना बन रहा है, बड़ा खुश होके भागता है दूर तक। कहीं महाराज जी का मन बदली हो गया तो रखो बोलेगा तो फिर तुरंत भाग देता है। कई अंतर भागने के बाद में ध्यान में आता है, अरे महाराज जी ने इस पारस मणि को तो रखा था कचरे में, अगर पारस मणि को उन्होंने कचरे में रखा है इसका मतलब उसके उनके पास इससे कई गुना लक्ष्य गुना कीमती वस्तु होगी, इसलिए उन्होंने पारस मणि को कचरे में रखा था डस्टबिन में। दोबारा लौट के आता है, महाराज जी एक बार पूछू क्या आपके पास में इसके पास इससे भी बढ़कर कोई वस्तु है क्या? बोला हाँ बिल्कुल है, नहीं आपने इसको कचरे में रखा था? हाँ ये कचरे के लायक था, ऐसे कचरे में रखा था। तो आपके पास इससे बड़ी वस्तु है क्या? हाँ है, तो वो मुझे चाहिए, इससे मूल्यवान वस्तु जो मुझे चाहिए, और एक शर्त है उसके लिए कि पारस मणि को जमुना जी में फेंक के आना पड़े। बड़ा दुविधा में पड़ गया वो, अरे हाथ में पारस मणि है, वो सोना बना के देखा था, देख रहा है महाराज जी को, देख रहा है, देख रहा है। क्या करो, नहीं लालची था वो, उससे भी कीमती वस्तु चाहिए थी। तो जमुना किनारे में गया, वहां पर जाके बहुत देर सोचा उसने, फेंकू कि नहीं फेंकू, फेंकू कि नहीं फेंकू। हमारी भी ऐसी अवस्था होती है ना, भगवान के लिए, भगवान को कुछ करूं कि भौतिक दुनिया का भोग ले लूं, कि भगवान का भजन करूं? नहीं नहीं, भगवान का भजन आज नहीं करूंगा, मुझे आनंद लूंगा। बहुत दुविधा में आखिर में फिर वो पत्थर को फेंक देता है जमुना जी में, उसका एकदम हल्का लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा भार उतर गया। कौन सा भार उतर गया? लालच का भार उतर गया। दोबारा सनातन गोस्वामी का लौट के आता है, तो महाराज जी फेंक के आया हूं, अभी दीजिए वो कीमती वस्तु। जमुना जी में स्नान करके आओ, स्नान करके आओ, बैठो अभी, अभी इससे ही, इससे करोड़ों गुना कीमती जो मणि है वो आपको मैं दूंगा, बोलो मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कि भगवान के नाम का दिव्य मणि जो है, इसके सामने सारे पारस मणि तुच्छ हैं। यहाँ के मणि जो है, यहाँ का जो सोना बनेगा उस पारस मणि से, तो आपको यही छोड़कर जाना पड़ेगा, इसमें से एक ग्राम सोना भी आप लेकर नहीं जा पाओगे। तो क्या वैल्यू है उस मणि का, और क्या वैल्यू है उस सोने का जो आप शरीर में पहनोगे? सन्यासियों के लिए ये तो पीले रंग का रिश्ता है, मलमूत्र है, इससे किसी का भला नहीं होता है, इससे लोभ बढ़ता है, युद्ध बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है लोगों के मन में। ये जो मणि है ये शरीर के बंधन से आपको मुक्त करेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको श्रृंखला से मुक्त करके भगवान का प्रेम देगा। ये गौलोक का प्रेम है, भगवान ने हरिधाम संकीर्तन में उसको बांध कर आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो ब्राह्मण धन्य हो जाता है और सनातन जी की कृपा से भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। उसके बाद में सनातन जी गोवर्धन में रहने को आते हैं। गोवर्धन पर्वत जहां पर है, हमारे बड़ा सरोवर है मानसी गंगा, जिसकी कथा मैंने आपको बताई थी पहले, उस सरोवर के पास में रहने लगे जहां पर चक्रतीर्थ है। और चक्रतीर्थ वो जगह है जहां पर गोवर्धन की लीला में भगवान ने चक्र को आदेश दिया था कि तुम ऐसे घूमना चारों तरफ पर्वत के कि आकाश से मूसलधार होने वाली वर्षा का एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, सब बाष्प होकर ऊपर चलना चाहिए, मतलब इवेपोरेट ऑल द वाटर बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। तो चक्र ने बहुत सेवा किया, सात दिन रात प्राप्त, इतना बड़ा भयंकर संवर्तक बादलों से वर्षा हो रही थी मूसलधार, लेकिन एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरा, सब बाष्प बनाकर आकाश में उड़ गया। जब भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा वर्षा समाप्त होने के बाद, तो चक्र ने भगवान से विनती की कि मुझे भी यहीं बसा लो, यहीं आसरा दो, यहीं स्थान दो। तो भगवान ने उनको वहां स्थान दिया, उसका नाम है चक्र तीर्थ, यहाँ पर चक्र ने चिरंतन निवास किया। तो वहां पर सनातन गोस्वामी आके रहते हैं। ब्रज के अंदर चार दिशा में चार महादेव रहते हैं, तो वहां पर चक्रेश्वर महादेव रहते हैं, मथुरा में भूतेश्वर महादेव रहते हैं, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव रहते हैं, और कामवन में कामेश्वर महादेव रहते हैं, और चार दिशा में बैठकर ब्रज की रक्षा करते हैं शिवजी महाराज। तो महादेव जी वहां पर रह रहे हैं और सनातन जी भी वहां पर रह रहे हैं। कुछ समय बाद में सनातन गोस्वामी जी वहां पर बैठकर उन्होंने भगवतामृत ग्रंथ लिखा, हरि भक्त विलास लिखा, सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, दशम टिप्पणी भागवतम के दशम संदर्भ पर उन्होंने टीका लिखी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ वहां पर वो लिख रहे थे एकाग्रता से बैठकर, महाप्रभु जी का आदेश था उसका पालन कर रहे थे। लेकिन अचानक वहां पर बहुत मच्छर हो गए, इतने मच्छर हो गए कि वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। तो सनातन गोस्वामी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने सोच लिया कि जगह भी ठीक नहीं, मेरा वजन नहीं हो रहा है ना मेरा लेखन हो रहा है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो निकलने लगे वो, तो चक्रेश्वर महादेव जी शंकर जी महाराज बड़े परेशान हो गए, इतना संघ भक्त वैष्णव का प्राप्त हो रहा है, देवता भी उसके लालायित रहते हैं, और ये संत मेरे सामने से निकल के जा रहे हैं। तो ब्राह्मण का धारण करके आते हैं और महाराज जी कहाँ जा रहे हो आप, क्या रहो आप, क्यों जा रहे छोड़ के, तो यहाँ पर बहुत मच्छर हो गए, मैं यहाँ पर भजन नहीं कर सकता हूँ ना मेरी सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप एक दिन और रहो और कल अगर मच्छर वैसे रहे तो फिर आप जा सकते। तो वहां जाते हैं, एक दिन रहते हैं, उतने समय में शंकर जी भगवान वहां पहुंचते हैं जहां पर सारे कीटकों के कंट्रोल करने वाले देवता रहते हैं। लॉर्ड शिवा गोज टू द प्लैनेट ऑफ द इंचार्ज ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग मॉस्किटोस, और उन देवता को आदेश देते हैं कि चक्रेश्वर महादेव मानसी गंगा के एरिया से सारे कीटकों को भगा दो और सनातन जी को आराम से रहने। महाप्रभु महादेव के आदेश से उस जगह से मच्छर गायब हो गए, सनातन जी वहां पर चिरंतन रहने लगे। शंकर महाराज जी पसंद ना हो सनातन गोस्वामी का संग उनके पास। अपने उम्र के 70 वर्ष की आयु तक सनातन जी ने हर रोज गोवर्धन का लंबा परिक्रमा दिया, 40 किलोमीटर हम लोग जो करते हैं ना वो 22 किलोमीटर को, उसमें से भी ब्रजवासी लोग आधी आधी करते हैं, उसे बड़ी वाली और छोटी वाली है ना। तो बड़ी वाली होती है वो दान घाटी से गोविंद कुंड की तरफ से आती है ज्योतिपुरा कुंड की, वो कुछ 5 कोस की होती है, 4 कोस की होती है। छोटी वाली जो है वो इस तरफ राधा कुंड के करके आती है, वो 3 कोस की होती है, कुल 7 कोस की परिक्रमा है 22 किलोमीटर। चैतन्य महाप्रभु सॉरी सनातन गोस्वामी चंद्र सरोवर पेटा गांव करके 40 किलोमीटर की शायद 12 कोस की परिक्रमा किया, रोज उनको कई घंटे लगते थे, पहले जवान थे तो फास्ट चलते थे, 70 वर्ष की आयु होने लगी तो बहुत सारे घंटे वो डंडा पकड़ के धीरे धीरे चलते थे, कई वर्ष तक उन्होंने साधना किया। तो कृष्ण भगवान को रहने गया, वो बालक बनकर आए, बोले महाराज जी आपने इतना जीवन भर गुरुराज जी का परिक्रमा दिया है, भगवान का नाम जप किया है, सिद्ध हो गए आप, अभी परिपूर्ण अवस्था में हो गए, आपको अभी ये परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। सनातन जी आगे आगे जा रहे, बालक पीछे पीछे आ रहे हैं, बोल रहे महाराज जी वन करो परिक्रमा। बोले नहीं, मैंने ये वचन लिया है कि मैं जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं परिक्रमा करते रहूंगा, और अगर कृष्ण भगवान ने मुझे आगे आदेश दिया कि परिक्रमा बंद करो तो बंद कर दूंगा, ऐसे बोल लेते। अचानक बालक गायब हो जाता है, बालक स्वयं कृष्ण थे, वो गिरिराज पे खड़े हो जाते हैं एक शिला पर, वो मुरली बजाते हैं, जैसे मुरली बजाते हैं वो मुरली की धुन के प्रभाव से वो जो गिरिराज की शिला है वो पिघलने लगती है जिस पर वो खड़े हैं, और उनका निशान बनता है पैरों पर। वो धुन सुनकर गाय भागवा के आती है, कान उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से देखने के लिए आकर पत्थर पे खड़े जाते हैं, उनका भी पैर का निशान बन जाता है। तो गाय चलाने की जो डंडी है लकुड़ी के उसको वैसे खड़ी है, उसका भी निशान बन जाता है, एक पैर पूरा एक पैर आधा, ऐसे पूरा निशान बनता है। तब ये मुरली बजाना बंद कर देते हैं, फिर पत्थर जो है पिघलने वाला शांत हो जाता है। वो पत्थर को उठाकर कृष्ण भगवान वापस बालक का धारण करके भाग भाग के आते हैं पीछे। तो महाराज जी ये देखो ये गिरिराज जी की शिला है, इसमें चरणों के निशान है भगवान के, गाय के भी निशान है, लकुटी के भी निशान है, इसकी परिक्रमा करो आप। और वो शिला लेकर बाबा को लेकर वो घर पे चले जाते हैं, वो घर पे चले रखते हैं जहां पर कुटी है वहां पर रखते हैं, और गायब हो जाता है बालक। जब बालक गायब होता है तो उनको ये अनुभूति होती है, अरे ये तो कृष्ण भगवान थे, तो स्वयं उस पर खड़े होकर शिला को लेके आए थे, तो समझ गए कि कृष्ण भगवान की इच्छा है कि आगे मैं अभी इसकी परिक्रमा करूं। इसलिए अपने कुटी में चार परिक्रमा करते थे गोवर्धन की शिला कर, शिला जिससे उनको गोवर्धन की परिक्रमा की भाग्य जो फल था वो प्राप्त हुआ करता था भगवान की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से। लेकिन जब वो ठीक थे शरीर से, तभी वो हर व्यास पूर्णिमा के दिन, वो कहीं चातुर्मास में एक बार व्यास पूर्णिमा आती है, व्यास जी का जन्म होता है, उस पूर्णिमा के दिन भगवान हर पूर्णिमा के दिन गोवर्धन पर रास करते हैं, रास नृत्य करते हैं। अभी कल के दिन माघ पूर्णिमा थी, गोवर्धन में सबसे बड़ी परिक्रमा लगी कल, क्योंकि पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में भगवान रास लगाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन सारे ब्रजवासियों को लेकर सनातन जी महाराज परिक्रमा करते थे, और सब गोस्वामी जिनको सभी ब्रजवासी उनको गुरु मानते थे, तो अपने गुरु के साथ में वो उनके नेतृत्व में परिक्रमा लगाया करते थे। 70 साल की उम्र के होने के बाद में ऐसे ही गुरु पूर्णिमा को सभी वृंदावन से, मधुबन से, तालवन से, बरसाना नंदगांव सब ब्रजवासी लोग इकट्ठा होते हैं परिक्रमा देने के लिए। तो महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं, आवाज दे रहे, महाराज जी टाइम हो गया परिक्रमा का, चलिए चलिए परिक्रमा का टाइम हो गया। महाराज जवाब नहीं देते, फिर वो गोस्वामी अंदर जाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं तो वो गिर जाते हैं, मतलब वो ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके होते हैं। तो पूरी दुख की लहर फैल जाती है पूरे ब्रज में, सब लोग छाती पीट कर रोते हैं कि हमारे गुरु जी, हमारे भाई, हमारे परिवार के जन सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ चुके हैं। तो सारे गोस्वामी वृंदावन से आ गए, और उस दिन उनके शरीर को लेकर गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ये सोचकर कि सनातन गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। इसलिए उनके शरीर को लेकर सारे ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और फिर उनका जो मंदिर है यहाँ पर मदन मंदिर का मंदिर, उसके नीचे आकर उनके शरीर को दफनाते हैं। इसलिए उनकी समाधि जो है सनातन गोस्वामी की, वो मदन मंदिर के मंदिर के नीचे, और सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, जैसे मदन मोहन जी जो पूजन है, मदन मोहन जी की सेवा की उन्होंने, मदन मोहन जी स्वयं संबंध अतिदेव है, जिनकी कृपा से हमारा माया से संबंध टूटता है और भगवान से संबंध जुड़ जाता है। तो उनके पूजन करने वाला जो आचार्य हैं वो संबंध आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको 2 महीने तक वाराणसी में संबंध ज्ञान सिखाया, कैसे जीव के लिए माया का आसक्ति छोड़कर भगवान के साथ संबंध जोड़ना है और कैसे उनकी सेवा करनी है, ये ज्ञान उन्होंने सिखाया। इसलिए मदन मोहन जी का पूजक होने के नाते वो संबंध आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है, और भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने वृंदावन में रहकर ग्रंथ लिखे, अनेक स्थानों को प्रकट किया, शास्त्र लिखे, पूजा आचार स्थापन किया, इसके बारे में ज्ञान प्रकट किया, इसलिए हम सनातन जी गोस्वामी महाराज के बहुत बड़े ऋणी हैं। कल जो यात्रा होगी हो सके तो हम उनके मंदिर भी लेकर जाएंगे। इस डिवाइन ग्रेस सनातन गोस्वामी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।